അജ്ഞാനസമരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനം നിശ്ലാഘയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. വംശാകല്പതരുഭ്യഃ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരസ്തിശേ നമഃ. ഗുരവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായൈ തദാലയൈ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ഭക്ത്യാ വിഹീന അപരാധലക്ഷ്യൈ ചിത്താശ്ച കാമാദി തരംഗമധ്യൈ കൃപാമയീ ത്വാം ശരണം പ്രപന്ന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണം. യം പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേത കൃത്യം ദ്വൈപായനോപി രഹകാതരയാ ജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ സർവോഭിനേദോ തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാന് തവൈവാസ്മി തവൈവാസ്മി ന ജിമാമി ത്വയാ വിനാ ഇതി വിജ്ഞേയ രാധേ തം നയമാമ ശരണം. ഭഗവത് സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ കാരണം ഗോപിയോ കി മഹിമ കാമേ ക്യാ വർണ്ണം കരു. जिन गोपियों के संग से नीच जाति कुरूप सदाचार विहीन असदाचार में लिप्त हमारे तत्व को नहीं जानने वाली पुलिंदी और ये सब कन्याएं भी एक दो नहीं शत सहस्त्र करोड़ों ऐसे लोग हमको प्राप्त हुए हैं. कब प्राप्त हुए? कोई को तो इसी जन्म में जिस जन्म में थी और कोई कोई दूसरे जन्म में उनको पाया. ऐसी गोपियों के सत्संग की महिमा है. कहने के बाद में अब अपने से न कह करके अब उद्धव के द्वारा इस बात को ये बतला रहे हैं. एता परम तनुभितो भुवि गोप बद्धो गोविंद एव निखिलात्मणि रूढ़ भावा वांछन्ति यदभ्यो मुनयो वयंच किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य. एता परम तनुभितो, ये उद्धव जी गोपियों के लिए बतला रहे हैं. जब कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा और उद्धव जी गए ब्रज में और गोपियों की प्रेम महिमा को उन्होंने कुछ उपलब्धि की अनुभव की उस समय में उद्धव जी कह रहे हैं. पृथ्वी में यदि जन्म लेकर के मनुष्य जन्म लेकर के किसी का जन्म सार्थक हुआ तो गोपियों का ही जन्म एकमात्र सार्थक है. इनका यथार्थ मनुष्य देह धारण करने का फल इन्हीं को यथार्थ मिला. आंखों का फल क्या है? कृष्ण का दर्शन करना. ब्रज में जब वो एक वन से दूसरे वन में गोचारण करते हुए जा रहे हैं और करुणा भरी और प्रेम भरी नेत्रों से गोपियों की ओर में देख रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, उस समय कृष्ण का दर्शन करना ही आंखों का फल है. शरीर का फल क्या है? कृष्ण के जो परम भक्त ऐसे हैं उनको स्पर्श करना ही ये शरीर का फल है. नाक का फल क्या है? यदि राधा कृष्ण के चरणों में या उनके गले में जो पुष्प की मालाएं जिसको गोपियों ने गूथा है और कृष्ण को अर्पित किया है, उस निर्माल्य का आग्रहण करने और अपने शरीर में धारण करने में ही उसका फल है। तो इस तरह से गोपियों का ही जन्म मनुष्य जन्म लेना सार्थक है। पृथ्वी धन्य है जहां पर की ब्रज है, और ब्रज धन्य इसलिए है कि वहां पर गोपियां हैं, इसलिए ब्रज धन्य है। क्यों? गोविंद एवं निखिलात्मने रूढ़ भावा, गोविंद नाम इंद्र ने दिया, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इंद्रियों के अधिपति जो ऋषिकेश इत्यादि हैं उनके भी मूल ये कृष्ण हैं, इसलिए इंद्र ने उनका नाम रखा गोविंद। तो ये गोविंद के प्रति निखिल आत्मनि समस्त जीवों के आत्मा स्वरूप जो कृष्ण हैं उनके प्रति इनका रूढ़ भाव महाभाव से भी ऊपर, महाभाव का भी घनत्व घना भाव रूढ़ भाव है, जिसको हम वांछन्ति यद् भवभियो, संसार से दुख कष्टों से भीत होने वाले, मुक्ति की कामना करने वाले मुमुक्षु, मुमुक्षु माने क्या, मुक्ति की इच्छा करने वाले संसार से भी, और मुनयों मुनिलों जो सब समय मनन करते हैं और मुक्ति जिनकी हो गई है स्वरूपता, ऐसे मुनिलों और वयंच हम भक्त लोग भी, हम लोग भी इसकी वांछा करते हैं किंतु मिला नहीं है किसी को, किन ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, वो जन्म ही क्या है जिसमें अनंत की कथाओं में रस नहीं है, जिनको रति नहीं है भगवान के लीला कथाओं को श्रवण में, जिनको रुचि नहीं है, वैसे कोटि कोटि ब्रह्म जन्म लाभ करके ही क्या होगा, ब्राह्मणों का जन्म अथवा ब्रह्मा का भी जन्म लाभ करके क्या होगा, और यदि अनंत की कथाओं में रसी और रस है जिनको, उनके लिए ब्रह्म जन्म बेकार है, कोई जरूरत नहीं। अब इसका सनातन गोस्वामी जी अब अर्थ कर रहे हैं। जगत में उद्धव इत्यादि नारद स्वयं ब्रह्मा ये परम पूज्य हैं, किंतु इनके भी परम स्तुति और वंदना योग्य गोपियां हैं, इनकी परम महात्मा पराकाष्ठा इनसे बढ़कर के और कोई नहीं है। उद्धव देखो तुम हमारे संग में भृत्य सुहृद सखा मंत्री, आप हमारे परम भृत्य हैं, सेवक हैं, मंत्री हैं, सुहृद हैं, सुहृद मैंने क्या, हमारी अच्छाई चाहने वाले सुहृद भी हैं, सखा हैं, मंत्री प्रवर हैं, हमारे एक तरह से सभी कुछ आप ही हैं, केवल यही नहीं संतु भागवतोत्तम भागवतेषु अहम्, जैसे शंकर जी वैष्णव में कृष्ण ही कौन है, शिव है वैष्णवा नाम, और नदियों में गंगा मैं ही गंगा हूं, पर्वतों में गोवर्धन मैं हूं, जहां जहां वो अच्छी चीज जो विभूतियां हैं वो सब मैं हूं, उसी तरह से भागवतों में मैं ही तुम हूं उद्धव, अर्थात तो अपने से अप्रत्यक्ष बतला रहे हैं। न तथा मैं प्रियतम आत्मजो निर्णय शंकर, मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा जी मेरे प्रिय नहीं है, मेरे सखा हरिहर एक आत्मा भी उतने प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो, संकर्षण हमारे भैया हैं किंतु वो भी हमारे उतने प्रिय नहीं है। और सी तो बात क्या, लक्ष्मी हमारे अंक में शाइन करने वाली लक्ष्मी जो है वो भी हमारी उतनी प्रिय नहीं, मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने तुम हमारे प्रिय हो। उद्धव को भगवान ने इस प्रकार से कहा। किंतु उस उद्धव के जो परम आराध्य हैं, जिनके चरणों की धूलि वो स्पर्श करना चाहते हैं, वो कैसी होंगी जिसके उद्धव इतने प्रिय, तो गोपियां कितनी ऊपर होंगी। इस तरह से ये बताया, ये उद्धव गोपियों की चरण धूलि बनने के लिए वृंदावन में गुल्म लता होना चाहते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, तो गोपियों की महिमा कैसी होगी। इदानीम अच्छा, इन सब प्रमाणों के द्वारा ये मालूम होता है कि कृष्ण के बड़े प्यारे उद्धव जी हैं, किंतु जब गोपियों की महिमा उन्होंने देखी, ये कृष्ण के प्रति इतना उनका रूढ़ भाव, मथुरा में रहते हुए इसकी अनुभूति नहीं की, और तब उन्होंने देखा कि कृष्ण संपूर्ण रूप से ब्रज में हैं, मथुरा में एक सामान्य अंश से हैं, और ये शायद गोपियों का जगत में प्रेम विख्यात करने के लिए ही यहां पर हैं, और कोई कारण नहीं, नहीं तो मथुरा नहीं आते, इसलिए यहां पर ब्रह्मा इत्यादि भक्त हैं, परमेष्टि हैं, और उनके आधिकारिक सेवक दास भी हैं, किंतु थोड़ा सा संबंध है उनके नाभि कमल से, उनके अंश के नाभि कमल से निकले हैं। इसमें ये दिखला रहे हैं कि ब्रह्मा जी भक्त हैं, किंतु उसमें पुत्र का भी अंश कुछ है, तो ये दिखला रहे हैं इसी श्लोक में इसमें आत्मज्योनि मैं ही जिनकी ज्योनि हूं, हमसे निकले हैं। तो यहां पर ये दिखला रहे हैं, ये संबंध जो है पुत्र का, ये भाव अधिक है भक्ति का। भक्ति माने क्या, भजता तु सेवायाम, सेवा की दृष्टि से वो सेवा का जो प्रेम का संबंध है वो जरा कम है, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर में तरह तरह के दायित्व हैं, इतना उनका वैभव है, अब सारे ब्रह्मांड को चलाना पड़ता है, और उस चलाने के लिए कभी कभी हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को भी बर देना पड़ता है, और इसलिए भगवान को इस सेवा में बाधा होती है, कभी कभी रावण कुंभकर्ण को भी बर देने में ये सहायक होते हैं, और ये लोग भगवान का विरोध करते हैं, उस समय में भगवान को मैं अपना मुख नहीं दिखा पाता, इसलिए हमसे अधिक श्रेष्ठ शंकर जी हैं। कभी कभी मैं खुद जाकर के कृष्ण की लीला में मैं बाधा देता हूं, गोपों को और सखाओं को और बछड़ों को चोरी करके ले गए। इसका अतिरिक्त और लीलाओं में भी ब्रह्मा जी ऐसा करते हैं, और 24 घंटा संसार के कामों में लगने से वो भूल भी जाते हैं, वो बैठ करके गोपी भाव से भगवान की चिंता करेंगे, ये सब। यदि समुद्र में से फेन निकला, और फेन से निकला कौन, दैत्य, बस ब्रह्मा जी भागते भागते प्राणांत हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि हमको ये सुजोग नहीं मिला जब ऐसे में भजन कर सकूं। इसलिए ब्रह्मा जन्म में भी जहां अधिक वैभव होगा, भगवान का भजन निश्चित रूप से नहीं होगा, रुपए पैसे अधिक हो गए, प्रतिष्ठा अधिक हो गई, तो चारों तरफ से भगवान का भजन बंद हो जाएगा, उसी में हम लोग लग जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि वो ब्रह्मा का जन्म उतना श्रेष्ठ नहीं है, शंकर का भी ऐसे ही समझो। प्रहलाद महाराज की वो प्रधानता दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज हमसे श्रेष्ठ है क्योंकि वे कौन सहस्त्रार्जुन इत्यादि को बाणासुर को उन्होंने सहायता की, उनका वो शिष्य है और उसके लिए कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। और भी कितने हैं सब, उनको मायावाद का प्रचार करना पड़ा। इस तरह से शंकर जी अपने को कोसते हैं कि मैं कृष्ण का प्यारा नहीं। इसलिए यहां पर आप बतला रहे हैं ये ब्रह्मा जी विख्यात बृहस्पति के शिष्य हैं, मंत्र शिरोमणि हैं और चतुर्ता के साथ में कृष्ण के दिए हुए संदेशों को लेकर के ब्रज में गए। इनको ऐसा भी मान था कि मैं गोपियों को सांत्वना दे करके ठीक ज्ञान दे दूंगा और वो समझ जाएंगी ये कृष्ण हमारे साथ ही सब समय है। किंतु जितना ही संदेश दिया उनका विरह तनिक भी कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता चला गया, समर्थ नहीं हुए। बल्कि उन्होंने गोपियों के वर्धमान माने क्रमशः नित्य निरंतर बढ़ते हुए अश्रुत जिसको आज तक कभी नहीं सुना गया भागवत के पहले और अदृष्ट पूर्व ऐसा किसी ने कभी देखा नहीं गोपियों जैसा प्रेम। उनका प्रेम गंभीर्य, कैसा प्रेम गंभीर्य, जिसके प्रति इतना उनका प्रेम है और उसको वो चोर लंपट धूर्त चोट्टा सब कुछ कह रही हैं, कहते उनसे हमारा कोई संबंध हम नहीं रखना चाहती हैं, उनको भूल जाना चाहती हैं, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, इसलिए उनके प्रेम को कोई नहीं समझ सकता, इतना भाव उनका गंभीर है। इतना भाव गंभीर है कि कृष्ण को स्वयं उनके चरणों में गिरना पड़ता है। कभी कभी कृष्ण भी उनके गंभीर प्रेम के आशय को नहीं समझ सकते, इसलिए महाप्रभु के रूप में आए राधा जी का भाव लेकर के उनको समझने के लिए। राधा या प्रणय महिमा कैसे, उद्धव जी मनी मन में बड़े विस्मित हुए और उन्होंने सिद्धांत किया, ओ इस पृथ्वी में यदि किसी का जीवन सार्थक है, मनुष्य धारण करना सार्थक है तो किसका, केवल गोपियों का, जो ऐसा गंभीर प्रेम इन्होंने पाया है। अतपर उनको धीरे धीरे भक्ति से प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करते करते हुए स्तुति करते हुए 6 श्लोक में उनकी महिमा गान किया, उसमें से ये पहला है। गान करते हुए क्या कह रहे हैं, गोपियों के जो ऐसे सुंदर गंभीर भाव हैं, प्रेम है, जिसको मुमुक्षु संसार में कष्ट भोगने वाले जीव जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, विवाह शादी करते हैं, घर बनाते हैं, बिजनेस वाणिज्य व्यवसाय करके मकड़े के जाल में फंस कर अंत में प्राणों को छोड़ देते हैं। सुख किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं, यदि सुखी मिलता तो इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग हो गए, ये संसार को क्यों छोड़ करके चले जाते। यदि कहो जनक की भांति रहते, जनक भी तो छोड़ दिए, व्यक्त क्यों हो गए, इसलिए संसार सुखमय नहीं है, इसीलिए लोग मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति मुमुक्षु और मुक्त जो हैं और भक्त लोग, इन सब लोगों ने गोपियों की महिमा का गान किया है। इसी को एता परम तनुभूतो भो गोप, जो इस श्लोक में बतला रहे हैं, नंद ब्रज में स्थित महालक्ष्मी स्वरूपा ये गोपियां हैं। ये कोटि कोटि गोपियां कैसी हैं, ओ ब्रह्म संहिता में बतलाये, तो सब ब्रह्म शब्दमान और भी प्रभाविता भी ताभी अव निज रूप तया कला भी, वो और भी उन्नत ऐसे ये महालक्ष्मी स्वरूपा गोपियां ही पृथ्वी में सबसे सफल जन्मा है। असल में ये इनका तो जन्म नहीं इस जगत में, ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति और उसके काय व्यूह या प्रकाश है, किंतु मनुष्य लीला के रूप में इसका वर्णन किया जा रहा है। ऐसा गोपियां ही हैं जो कृष्ण को भी गोपी गुप्त रखती हैं, कृष्ण का भी प्रेम का संवर्धन करती हैं, उनको रक्षा करने वाली होती हैं, इसलिए उनका नाम गोपी है। सर्व अंतर्यामी क्या है, आत्मा निखिल आत्मनि, निखिल प्राणियों के निखिल जीवों के आत्मा स्वरूप जो हैं, सर्व अंतर्यामी गोविंद, इनके प्रति रूढ़ भाव। रूढ़ भाव माने क्या है, जहां हम लोग श्रद्धा के लिए ही पारमार्थिक श्रद्धा के लिए लालायित हैं, नहीं हो पाती है, और कहां ये ऐसी श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव सब ये रूढ़, ऐसा गोपियों का इन कृष्ण के प्रति रूढ़। जो सोदा मैया का है कहां तक, अनुराग, कभी कभी सुबल आदि शाखाओं का अनुराग के बाद भी महाभाव को स्पर्श करता है, रुक्मिणी इत्यादि का कभी कभी भाव महाभाव को थोड़ा सा स्पर्श करता है, इसे आगे नहीं। इन गोपियों का ही भाव रूढ़ है। भूवि शब्द के द्वारा पृथ्वी और पृथ्वी से लेकर के भोग ऐश्वर्य पर ये स्वर्ग भी, वैकुंठ को भी ले सकते हो, कोई हर्ज नहीं। कहीं भी कृष्ण विषय विषय प्रेम जो है ये नहीं हो सकता, वैकुंठ जगत में भी ये संभव पर नहीं है, असंभव है। यदि कहो जे कृष्ण गोपियों को बुला लेते द्वारका में और वहीं राज करते, गोपियों के साथ में रहते, तो क्यों नहीं बुला लेते, नहीं संभव है। कृष्ण वहां पर बंसी नहीं धारण कर सकते, मोर का मुकुट नहीं कर सकते, वहां के लोग वहां के जादू लड़के हंसेंगे और बंसी निकाल करके छिन करके फेंक देंगे और सोने का हार और ये सब पहना देंगे, गैया को चराने देंगे, महाधाराज धीराज कृष्ण वहां द्वारकाधीश गैया को लेकर के वहां पर चराने जाएंगे, लठिया लेकर के कमली काली कमली लेकर के खाली पैर खाली जूता, जूता भी नहीं, कृष्ण के लिए संभव होगा। अरे एक बार दुर्वासा ने उनको रथ में जोत दिया और हांकने लगे और उस समय में रुक्मिणी इत्यादि रानियां सब देखती रह गई, भय के मारे भयभीत हो गई, उसमें न जाने क्या हो गया। और ऐसे यदि होता है कि यशोदा मैया कान मलती हैं, वहां पर कोई मल दे, ये सब वहां के लिए संभव पर नहीं है। ऐश्वर्यमयी भूमि में ये सब संभव पर नहीं है, इसलिए गोपियां कहते हमें ले जाकर के वहां क्या करोगे, वहां पर तो तुम्हारी पाटरानियां सब समय तुम्हारे पास में रहेंगी, ये संभव पर नहीं है। सुतरां ये बैकुंठ इत्यादि के में भी इसका अभाव समझना चाहिए, यहां तक कि द्वारकापुरी तक, ये भूमि का तत्पर जो वहां तक द्वारका भूमि भी। तनुभृत हो जो शरीर को धारण किए हुए हैं, तीन गुल्म लता इत्यादि सब कुछ देहधारी, नीच योनि से लेकर के जितने भी जीव हैं, इनको भी ये गोपियां अपने संस्पर्श से क्या कर दिया, जो जिसको जिसको जिसमें इनके चरणों की धूली लगी हुई, जिसको उद्धव चाहते हैं और उनको शायद मिले न मिले, किंतु वृंदावन के सेवा कुंज है और सब जगह है जहां पर घासें हैं लता हैं जिस पर की गोपियां चल रही होंगी भाव में विभोर होकर के, उनका स्पर्श हो जाने से वो निष्फल जाएगा, साधारण एक नारद जी जैसे भक्त हैं वो भी प्रेमी हैं, और जिनके दर्शन मात्र से ही नलकुबर जैसे निम्न ज्योनि को कहियो और दुराचार में ग्रस्त वो भी भगवान का प्रिय बन गया। जिसको जिसको नारद छू देते हैं उसको वो ऐसा सिद्ध बना देते हैं। तो ये गोपियों का चरण की धूली जहां जिनको स्पर्श मिल गया होगा वृंदावन उस समय में, तीर्ण गुल्म लता सांप बिच्छू सब जो कुछ भी गो के स्पर्श से सब सच्चिदानंदमय तनु होकर के कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। इसलिए ये गोपियों का जन्म भी सार्थक है। दूसरों को अपना तो साथ है, दूसरों का जीवन भी सार्थक बना देती हैं। अथवा स्वभावतः अपने करुणा के प्रभाव से पृथ्वी के दुर्गत जनों के परम हितकारी ये गोपियां हैं। कैसे? वंदे नंद ब्रजई श्रीनां पादरेणु अभिक्ष्णस जासंग हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनत्वयम्। उनके मुखों से जो हरि कथा निकली है वो कथाएं विरह में और संयोग में निकली हैं, रूढ़ रूप में निकली हैं। वो कथाएं विश्व के समस्त लोगों को यदि स्पर्श कोई भी कर दे या स्पर्श करा दे तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। पुनाति, पुनाति माने क्या? पवित्र माने ये मत समझो जो निगेटिव रूप में उनके दुखों को दूर करती कर करके और जो अपवित्र थी पवित्र कर, नहीं, कृष्ण प्रेमा भक्ति दे करके उनका जीवन सार्थक कर दिया, ये पवित्र। साधारण पवित्र नहीं, गंगा जल में हम पवित्र होते हैं, पाप दूर हो जाते हैं, ये नहीं, केवल पॉजिटिव रूप में उनमें ये ब्रज की भक्ति को वो दे देती है। यदि वे स्वरूप सिद्ध जो हो गई और स्वरूप सिद्ध के बाद में गोपी के घर में जन्म लिया, उनको संग देकर के ये क्या करती हैं? उनको नित्य सिद्ध बना करके कृष्ण के रास आदि लीलाओं में प्रवेश करा देती हैं ये गोपियां। उनके बिना ये नहीं हो सकता, उनको भी अपेक्षा रहती गोपियों की कृपा की, तो और लोगों की तो बात क्या, उसका कारण क्या है? कारण है अखिलात्मा परमेश्वर श्री गोविंद के अत्यंत प्रियवती हैं, उनको अपने हृदय में धारण करती हैं। साधु संत लोग जगत को पवित्र किस लिए करते हैं? क्योंकि अपने हृदय में भगवान को रखते हैं। कृष्ण वहीं पर विश्राम करते हैं जिनके हृदय में भगवान रहेंगे और उसकी अनुभूति उनकी है और वो सेवा करते हैं, तो उनके प्रभाव से अपने आप जगत का कल्याण हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उनको अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे नारद जी को जो कोई देख लिया, जैसे देख लिया उसका जो रूप प्रभाव पड़ेगा अवश्य ही। यदि यहाँ एक क्रियासन का मिट्टी के टीन रख दिया जाए तो उसका गंध जरूर चारों तरफ में आएगा। जहां पर साधु रहेंगे उनका गंध नहीं आएगा, उनके अंदर से चिन्ह में जो चिनगारियां निकलती हैं वो जगत को पवित्र कर देती हैं। उनसे कोई प्रश्न करो ना करो, हम उनके सामने बैठ जाओ तभी वो क्रिया करती हैं। और यदि कृपा करके कुछ हरि कथा कहते हैं तब तो कोई बात ही क्या है, जरूर उसका प्रभाव। ऐसा है साधु संग का महात्म है। तथापि एव है गोविंद एव अखिलात्मनिरूढ़ भावा, इसका अर्थ ये क्या है? उनका रूढ़ भाव इतना अधिक गंभीर है, सर्वनिरपेक्ष। सर्वनिरपेक्ष माने क्या? ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि के द्वारा वो नहीं आएगा, क्योंकि ये भक्ति के द्वारा भक्ति संजात होती है। विशेष करके भगवान की कृपा से या महाभागवतों की कृपा से ये भक्ति होती है, इसलिए सर्वनिरपेक्ष है। ज्ञान के द्वारा नहीं होगा, कर्म के द्वारा अच्छे अच्छे सदाचार कर्मों को करेंगे नहीं होगा, दान पुण्य करेंगे वो भी नहीं होगा, वैदिक भक्ति द्वारा भी नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा ये चांस है कि उसमें वैदिक भक्ति करते समय किसी महापुरुषों का संग हो जाए और उनके संग के प्रभाव से उसका बदल हो जाए, तभी एक हो सकता है, अन्यथा नहीं।
अपूर्व परम विचित्र रास क्रीड़ा, अधुना अमात धैर्योपहारी परम मनोहर जगत रोदक और वैष्णवगणेर अंत दशा संपादक चीर विरह द्वारा अंत संवर्धित भावावेग। मैं एक एक विशेषण एक एक देख करके चले जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी कैसा वो रूढ़ भाव उनका कैसा है उसी के लिए बता। राजक्रीड़ा ये गोपियों ने कृष्ण के लिए बुलाया रास के लिए, न कृष्ण ने अधैर्य होकर के बुलाया, इसलिए बुलाया। उनके बिना इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी इसलिए गोपियों को बुलाया। गोपियां सचमुच में जा ही रही थी किंतु छल बल कल से कृष्ण ने जाने नहीं दिया। राजक्रीड़ा इत्यादि के द्वारा हमारे धैर्य को भी हरण करने वाली, कृष्ण के भी धैर्य को हरण करने वाली परम मनोहर जगत रोदक, जगत को भी रुला देने वाली अपनी विरह व्यथा से